हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। नैना से बात करने के बाद सुनैना को एक तरफ थोड़ा सुकून मिला, वहीं दूसरी तरफ अपनी आगे की पढ़ाई, कैरियर और शादी के बारे में सोचकर उसे काफी टेंशन हुई। वो सोचने लगी कि अब क्या करेगी। अपनी पढ़ाई के लिए वो किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगी, ये सुनैना ने सोच लिया था। उसने सोचा कि वो आदित्य को इस बारे में बताएगी, लेकिन फिर उसने सोचा कि हर वक्त नशे में रहने वाला आदित्य क्या उसकी बात और उसकी सारी समस्या समझेगा। आदित्य को लेकर उसके मन में कई डाउट थे। वो एक मिस्ट्री पजल जैसा था जिसे सुलझाना फिलहाल सुनैना के बस की बात नहीं थी। वो खुद में ही इतनी उलझी हुई थी कि उसे अपने निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन वो इस तरह की स्थिति में पहली बार नहीं थी। उसकी माँ की मृत्यु के बाद से ही ऐसा होता आया था, और भले ही कोई रास्ता नजर न आए, सुनैना अपने रास्ते खुद बनाना जानती थी। नैना भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन बड़ी होने की वजह से उस पर शादी का काफी समय से प्रेशर था। वो शादी अभी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे मॉडलिंग और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना था। इसलिए वो घर वालों से अलग रहने लगी थी। घर वाले उसकी पढ़ाई के लिए सपोर्ट नहीं करते थे, तो उसके इस पैशन के लिए क्या ही करते। फिर भी एक बार बता दूंगी उसे, आखिर उसके घर में रह रही हूँ, इतना बताना तो बनता ही है। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो मुझे मना करेगा या आगे की पढ़ाई के लिए रोकेगा, सुनैना मन ही मन आदित्य के बारे में सोचती हुई खुद से बोली और काफी देर तक बैठी हुई उसके वापस आने का इंतजार करती रही। डिनर रेडी होने पर गीता उसे बुलाने आई, लेकिन घर में अकेले होने की वजह से सुनैना का खाना खाने का मन नहीं किया। उसने गीता से मना कर दिया। गीता ने उसे एक दो बार और बुलाया, लेकिन सुनैना का मन नहीं हुआ। गीता अपने कमरे में चली गई। सुनैना आखिरकार थक कर उसी काउच पर बैठे बैठे आदित्य का इंतजार करते करते सो गई, लेकिन पूरी रात बीत गई और आदित्य वापस घर नहीं आया। सिंघानिया इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग, आदित्य के ऑफिस का केबिन। सर, आपको अब अपने घर चल जाना चाहिए, इतनी रात हो गई है, रात के 2 बज रहे हैं। रवि आदित्य के सामने वाली कुर्सी पर बैठा हुआ थोड़ा ऊँघते हुए बोला, मैंने तुमसे पूछा रवि कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम याद रखा करो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मेरे बॉस नहीं हो। हर वक्त बिना मांगे अपनी एडवाइस देना जरूरी नहीं होता। रवि की बात सुनकर आदित्य उस पर गुस्सा दिखाते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला। आदित्य के इस तरह बोलने पर रवि, जो आराम से अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़कर और कोहनी सामने वाली मेज पर टिकाकर बैठा था, वो एकदम सीधे होकर बैठ गया और बोला, सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी सर, मैं तो बस टाइम इतना ज्यादा हो गया था इसलिए। बोलते हुए रवि थोड़ा अटका और अपने माथे पर आई पसीने की बूंदे अपने रुमाल से साफ की। यू बेटर बी, और मुझे लगता है तुम्हें ही कुछ ज्यादा नींद आ रही है शायद, आज दिन भर छुट्टी थी ना तुम्हारी, तो इस वक्त क्यों नाटक कर रहे हो काम करने से बचने के लिए। आदित्य अपनी चेयर से उठकर खड़ा हुआ, उस बड़ी सी ग्लास टेबल के इर्द गिर्द कुछ कदम चलते हुए रवि की तरफ तल्ख नजरों से देखते हुए बोला, नो सर, मुझे कोई छुट्टी नहीं चाहिए, मैं तो बस आपके लिए, वैसे आपको भी घर नहीं जाना तो इट्स ओके, काम ही कर लेते हैं। आदित्य के इस तरह अपनी जगह पर खड़े होकर बोलने की वजह से रवि थोड़ा घबरा गया और अपने गले में फंसी थूक निगलते हुए अपना सूखा गला तर करते हुए बोला, या नाउ टेल मी द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ दिस वीक, लास्ट 2 डेज से ऑफिस नहीं आया ना मैं। आदित्य एकदम सीरियस होकर वापस अपनी चेयर पर बैठते हुए और रवि की तरफ देखते हुए बोला, अरे सर, अपनी शादी में तो लोग 2-2 हफ्ते या महीनों तक काम पर नहीं आ पाते, तो फिर सिर्फ 2 दिन की छुट्टी लेना कौन सी बड़ी बात है। आदित्य की बात सुनकर रवि एकदम से ये बात बोल गया, लेकिन फिर जैसे ही उसकी नज़र आदित्य पर पड़ी, जो कि काफी गुस्से में घूर कर उसे देख रहा था, तो रवि फिर से चुप हो गया और चुपचाप प्रोग्रेस रिपोर्ट उसे दिखाने लगा। आदित्य ने भी लैपटॉप की स्क्रीन पर एक नज़र डाली और सब कुछ ध्यान से देखने लगा। काम को लेकर इस वक्त वो खासा संजीदा लग रहा था। तभी किसी ने आदित्य के केबिन के दरवाजे पर नॉक किया। काम में लगे हुए आदित्य और रवि दोनों का ध्यान दरवाजे की तरफ गया। कैन आई कम इन आदि सर, दरवाजे की दूसरी तरफ से एक लड़की की बहुत ही प्यारी सी आवाज आई। वो प्रोफेशनल बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, उसके लफ्जों में साफ तौर पर चाशनी घुली हुई लग रही थी। ये इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है रवि, घर पर नहीं है क्या इसका। उस लड़की की आवाज सुनकर आदित्य काफी चिढ़ गया और अपना गुस्सा रवि पर उतारते हुए बोला, मुझे कैसे पता होगा सर, ज्यादातर स्टाफ तो नहीं है इस वक्त ऑफिस में, ये शायद नाइट शिफ्ट कर रही होगी। रवि हड़बड़ाते हुए आदित्य की बातों का जवाब देते हुए बोला और फिर धीरे से अपने मन में बोला, या फिर शायद आपको देखकर ही रुक गई होगी हमेशा की तरह। कुछ कहा तुमने रवि, जाओ देखो जाकर, क्या काम है अब इसे इस वक्त? आदित्य ने थोड़ा इरिटेट होते हुए रवि को ऑर्डर देने वाले अंदाज में कहा। रवि ओके बोलता हुआ जल्दी से अपनी जगह से उठकर दरवाजे की तरफ पढ़ा, लेकिन तब तक वो लड़की बाहर से ही आधा दरवाजा खोलकर कुछ कदम केबिन के अंदर आ चुकी थी। क्रमशः